भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य।
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका योग रहस्य के इस योग के गुलिस्तान में। दोस्तों, ये योग रहस्य आपके जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की सुगंध भरने के लिए है। यदि आपके जीवन में कहीं भी आप थोड़ा सा अधूरापन महसूस करते हैं तो योग आपके लिए विश्वास है, क्योंकि योग जो है संपन्नता और संपूर्णता से रास है। तो आइए इस रास में हम शामिल होते हैं अपने मेहमानों के साथ जो आज हमारे बीच यहां पधारे हैं, हमें योग की और गहरी परिभाषा समझाने के लिए, सुनाने के लिए और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं जयपुर से राजयोगिनी सुषमा दीदी जी।
नमस्कार जी।
भ्राता महेंद्र पाल जी जो कि चंडीगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं, और बॉबी भाई जो कि योगा के इंस्ट्रक्टर हैं। आप सभी से मिलकर हम आइए इस समय को और सजाते हैं, अपने जीवन को योग के पुष्पों से, उसकी सुगंध से महकाते हैं। सबसे पहले मैं सुषमा दीदी जी से कहना चाहूंगा कि स्वागत है दीदी आपका। और आज के सारे सिनेरियो को देखते हुए, जगत को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए, आपको क्या लगता है योग क्यों महत्वपूर्ण है?
आज के संसार में मनुष्य दुखी है, अशांत है, परेशान है। चाहे तन देखो, चाहे मन देखो, चाहे धन देखो, चाहे बुद्धि देखो, तन से भी परेशान, मन उदास, बुद्धि परेशान, और धन के तो मारा मारी हर एक के जीवन में चल रही है। ऐसे समय में मनुष्य के जीवन में शक्ति कैसे आए? जीवन का अर्थ है जहां तन दुरुस्त, मन दुरुस्त, बुद्धि एकदम विशाल बुद्धि हो, जीवन संपन्न हो। तो जीवन में संपन्नता के लिए योग की शक्ति का होना आवश्यक है। योग ही ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन में खुशी, संतुष्टता का दान देता है।
बिल्कुल सच कहा दीदी जी। इसलिए योग तो सचमुच आज के युग में अमृत की तरह है। हमारे बीच भ्राता महेंद्र पाल जी, अग्निहोत्री जी हैं चंडीगढ़ से। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को 17-20 साल पहले देखें और अब देखें, योग करने के बाद इतने वर्षों से आप योग से जुड़े हैं, आपको अपनी दो तस्वीरों में क्या फर्क नजर आता है?
यूं कहेंगे कि जमीन और आसमान जितना फर्क नजर आता है। पहले जो लाइफ थी वो लाइफ बिल्कुल एक समझ लो जिसको हम वाइल्ड लाइफ कह सकते हैं, और आज की लाइफ जो है जीवन जीने की कला इस राजयोग ने हमें सिखाई। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान पहले नहीं था। पहले तो दुनिया की रेस में हम भाग रहे थे, दौड़ में दौड़ रहे थे, कुछ भी एम, रियल एम ऑफ लाइफ वहां तो दूसरा लौकिक एम था कि हमें, हाँ, बैंक में जनरल मैनेजर था कि और आगे कहां जा, कैसे जा सकते हैं, भाग दौड़ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कंपिटिटिवनेस में बहुत रहते थे, हर बात में जल्दीबाजी करना, लेकिन अपने प्रोफेशन में भी परफेक्ट रहना और आगे दौड़ने की कोशिश करना
जी।
तो वो सब एकदम फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, जिससे टेंशन ही टेंशन होती थी, तकलीफ होती थी, खुद भी और दूसरों को भी तकलीफ।
मतलब जिंदगी की रफ्तार ने आपको थका दिया था।
उस रफ्तार ने इतना थका दिया कि वो इस स्टेज तक पहुंच गए कि हॉस्पिटल पहुंचना पड़ गया
जी।
तो जब ये उसके बाद जैसे ही राजयोग सीखा, पता चला जब ये हार्ट अटैक की बीमारी इससे ठीक हुई और जीवन जीने की कला आ गई, और जीवन में जो आनंद, जो सुख, जो शांति, जो खुशी जो ढूंढ रहे थे
जी,
वो मिल गई।
मतलब स्वास्थ्य के साथ साथ बोनस में ये सब भी मिला,
ये सब कुछ फ्री में मिल गया, बोनस में मिल गया
जी।
बेसिक जो था वो बेसिक, सबसे बड़ी चीज जो हमें मिली, ज्ञान मिल गया
जी।
ट्रू नॉलेज कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, और वो ट्रुथ ट्रू नॉलेज ही देता है। तो उसमें बड़ी अच्छी चीजें समझ में आई कि जीवन कैसा होना चाहिए। पहले का जो जीवन था वो फुल ऑफ वाइसेस था, वैल्यूज जिसमें थी ही नहीं, बहुत कम थी, मतलब इतना हर समय कंपटीशन में, क्रिटिसिज्म में, दूसरों को देखना, दूसरों को जजमेंट करते रहना, तो बहुत सारी ऐसी वाइसेस थी जो इंसान के अंदर बाद में पता चला, इस राजयोग से पता चला कि वो नहीं होनी चाहिए
जी।
और वही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का कारण था, वही दूसरों से नफरत करना, दूसरों में कमियां देखते रहना, कमजोरियां देखते रहना, और वो नेचुरली जो दूसरों में देखते हैं वो अपने अंदर भी आती जाती हैं।
बिल्कुल, ये तो सीधा नहीं है।
तो सोचते थे
भी नजर जाए, जैसे हाथ लगाओ तो हाथ पे रंग लग जाता है, तो नजर जिस चीज पे गई, जिस चीज को आपने देखा, वो आपके अंदर, आपके अंदर उसका रंग लग जाता है। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं।
तो इससे जब ये सीखने को मिला, यहाँ पे इस ज्ञान मिला, सबसे बढ़िया ये ज्ञान मिला, उसके दूसरी बात पिलर बताया गया कि शुद्धता, पवित्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में बिल्कुल थी ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था कि ये भी एक लाइफ होती है, स्टाइल होता है। अब उस पर्टिकुलर एज में लेस देन 50, तो इस रेस में भाग रहे थे, तो बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे थे। तो जैसे ही यहां ज्ञान में आए, पता चला कि वैल्यूज के बारे में, तो फिर वो जीवन में जैसे कहते कि बाहर आ गई
जी।
रोग तो एक नहीं था, कई रोग शरीर में आ गए थे, तो उसके बाद एक एक करके सब भाग गए। टेंशंस बहुत थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, वो समस्याएं ऑटोमेटिकली जब वैल्यूज पे आ गए, चलने लग गए
जी,
तो लाइफ में ये राजयोगी लाइफस्टाइल बन गया, उसके बाद तो जीवन जीने का आनंद आ गया।
तो बॉबी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा
जी भाई सर,
कि जैसे सब बता रहे हैं अपने अनुभव से, कि क्यों आज ये हालत थी, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारे जीवन को संवार देता है, निखार देता है, योगा में भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
योगा में कुछ आसन है हमारे जो बीमारियों को दूर करते हैं, वो करना चाहिए। उसके साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए
जी।
जैसे कहते हैं कच्चा खाना सच्चा खाना, अगर उसको भी हम जीवन में अप्लाई करते हैं तो उससे भी हमारा जीवन जो है स्वस्थ बनता है। और कुछ आज हम देख रहे हैं कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है, और मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां, कब्ज, घुटनों का दर्द, पेट का बढ़ना, ये सारा उसमें आ रहा है। तो इसके लिए हम कुछ आसन बताएंगे, और साथ साथ जब जैसे गर्मियों का मौसम है उसमें हम कौन से प्राणायाम करें
जी,
वो भी बताएंगे, उससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
तो आप हमें थोड़े से आसन और थोड़े प्राणायाम करके दिखाएं।
अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन, पंजे आगे की ओर दबे हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, सांस भरते धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर, भुजबली कनपट्टी के साथ सटी, कमर गर्दन सीधी, सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे, जितना आप झुक सके अपने सामर्थ्य अनुसार, भले कम झुके यहां पर, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए फिर आगे की ओर जाएंगे। जब हमारा अभ्यास बन जाए झुकने का, हथेलियां आगे निकली, तो यहां पर हम अंगूठा पकड़ेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, मस्तक आसन घुटने पर, कोणासन पर, लीवर को मजबूत बनाने के लिए, पेट को कम करने के लिए बहुत उत्तम आसन है। पूरे ब्लड का संचार जो चेहरे पर होता है, चेहरे पर लाली आती है। ये पश्चिमोत्तान आसन हुआ। एक आसन और, पेट को कम करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए दूसरा आसन करेंगे, सर्पासन। मस्तक आसन पर रहेगा, दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, सांस भरेंगे, आगे से गल उठाएंगे, पीछे पैर, पेट के बल दोलन करेंगे, लेफ्ट राइट, पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती है, पुराने से पुराना कब्ज टूटता है।
ये सर्पासन है
जी,
और भुजंग आसन इससे थोड़ा सा अलग होता है।
भुजंग आसन इससे डिफरेंट होता है
जी।
तो धीरे धीरे ऐसे करके पूरा भार नाभि पर लेते हैं।
हाँ जी,
नाम मात्र को हाथ रखें।
तो ये सर्पासन भी बहुत ही लाभकारी है
जी,
वजन कम करने के लिए और पेट के रोगों,
पेट को बहुत दूर करते हैं। एक आसन है जो शरीर की कंपन को दूर करता है, कोणासन बोलते हैं उसको।
उसमें पंजे दबे रहेंगे आगे, दोनों हाथ पीछे रहेंगे, हाथों की स्थिति ठीक करते हैं, धीरे धीरे बहुत धीमी गति से ऊपर की ओर जाएंगे, पंजे नीचे की ओर दबेंगे आसन पर, नाभि ऊपर जाएगी, गर्दन सीधी रहेगी, शरीर की कंपन भी रहती है,
भुजबली हाथ कांपते हैं
जी
उस तरह से, या शरीर के कुछ और कंपन दूर होते हैं?
नहीं, हाथ जो कांपते लिखते समय
जी,
या कोई भी ऐसी चीज होती है जो कंपन होती है तुम्हें, वो दूर होती है, कब्ज भी टूटता है।
क्या कहते हैं, क्या नाम है इस आसन?
कोण आसन।
कोण आसन करने से
जी भुजबली कंधे मजबूत बनते हैं
जी,
धीरे धीरे बहुत ही आराम से जैसे गए थे वैसे ही ऊपर जाने को नचाने की गति समान होगी।
इसमें झटका नहीं लगाना है, आराम से, बहुत
आराम आराम से,
आराम से करना है।
अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी एक्स्ट्रा जो गर्मी होती है शरीर के अंदर वो दूर होती है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, हम करेंगे शीतली प्रणाम, नलिका बनाएंगे जीवा की, सांस भरेंगे, मुख बंद करते हुए सांस बाहर करेंगे, फिर करेंगे, शीतली प्रणाम हाई बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जहां पर आपको पानी की व्यवस्था नहीं है और प्यास लगी है उस समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो भूख प्यास को शांत करता है। दूसरा हम करते हैं गर्मी के दिनों के लिए शीतकारी प्रणाम, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी के दिनों के लिए भी बहुत अच्छा है, दांत मिलाएंगे आपस में, दांतों से सांस खींचते हैं और नाक से बाहर करते हैं,
इससे क्या लाभ होता है?
ये दांतों में जो गर्म ठंडा पानी लगता है उसको दूर करता है, दांतों के प्रॉब्लम जो होती है, जितने प्रॉब्लम होते हैं सारी दूर होती है, और दूसरे इसमें गर्मी के दिनों में हमें गर्मी नहीं लगती है, शीतलता प्रदान करता है
जी।
भ्रामरी प्रणाम जो याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, दोनों अंगूठे कान के छोटे पर्दे पर रखते हैं, ऊपर वाली दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे वाली होठों पर, भोरे की तरह गुनगुन करेंगे, सांस भरेंगे, फिर कान बंद करके अगर करें, इसकी जितनी चाहे उतनी आवृत्ति कर सकते हैं, स्पंदन होता है, वेट होता है उठने में, वह मस्तिष्क में टकराते समस्त वाइब्रेशन, मस्तिष्क की शुद्धि होती है, याददाश्त बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए
एकाग्रता और याददाश्त ये दोनों बढ़ाता
जी, खोई हुई याददाश्त वापस लौट आती है,
ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों बॉबी भाई ने बताया आपको प्राणायाम और साथ साथ उन्होंने आसन करके बताया जिससे आप पूरा लाभ ले सकते हैं, लेकिन इन्हें करते समय ध्यान रखें कि आप बहुत इन्हें आराम से करें, जितना आप सहज कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, और इन्हें सुबह के समय करें, खाना खाने के बाद ना करें तो बेहतर होगा। और हमें शीतली जो प्राणायाम बताया, मैं दीदी जी से पूछना चाहूंगा कि शरीर की शीतलता तो कुछ ठंडा लेकर या ऐसे प्राणायाम से, शीतली प्राणायाम से ठीक की जा सकती है, अगर गर्मी लग रही है तो शीतली प्राणायाम कीजिए, आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन जो इंसान के मन में गर्मी है, जो मानव के अंदर ताप है, उसका क्या किया जाए, योग उसको किस तरह से ठीक करता है?
आजकल तो लोग भी हंस के कहते ही हैं कि गर्मी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि मनुष्य ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहा है। तो बाहर तो हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं और ये आवश्यक भी है, लेकिन क्या मैं अपने मन और बुद्धि को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को भी इतना फ्लेक्सिबल बना सकती हूँ? अधिकतर हम अपने संकल्पों को, भावनाओं को फ्लेक्सिबल न बना पाने के कारण अपनी ही जिद में, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मैं तो ऐसा ही करना चाहती हूँ, तो अपने वातावरण को, अपने दिल की भावनाओं को गर्म करते रहते हैं। और आप कई बार देखेंगे एसी भी चल रहा होता है, सब कुछ है, ठंडा पानी भी है, लेकिन मनुष्य को पसीना ही पसीना आ रहा है, क्योंकि अंदर में उसके जो ईर्ष्या द्वेष की आग है, स्वार्थ की आग है, विषय वासनाओं की आग है, वो उसके अंदर गर्मी पैदा कर रही है।
और इतनी गर्मी होती कि कोई जरा सा छू दे तो उबाला भी आ जाता है।
उबाल तो ऐसा आता है, ऐसा आता है। पूछो। तो इसलिए यहाँ आवश्यकता है समझ की। ज्ञान का अर्थ है समझ और योग का अर्थ है स्थिरता। जैसे हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर आसन में करते हैं, तो मेरे मन का आसन कौन सा हो, मेरे मन में पहले स्थिरता हो, शांति का भाव हो, शांति का आसन, मेरा ये लक्ष्य पक्का हो, क्या भी हो मुझे शांत रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है,
मेरे विचार शांति के हो, मेरा लक्ष्य शांति हो,
मेरा जीवन में प्रसन्नता हो, कुछ हो ना हो।
ओके।
तो जब हम अपना लक्ष्य प्रसन्नता रखते हैं, तो कोई कुछ भी कहता है तो उस समय हमारे अंदर शक्ति आ जाती है उसको अवॉइड करने की, नेग्लेक्ट करने की, रिजेक्ट करने की।
मतलब कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, मुझे जो अपना रोल अदा करना है वो प्रसन्नचित होके, एक अच्छे एक्टर का, ऐसा एक्टर जो प्रसन्नचित है, उसका रोल अदा करना है। सृष्टि रंगमंच पर सदा प्रसन्नचित रहना है, ऐसी अदाकारी दिखानी है। तो यदि ऐसा लक्ष्य हो तो आप पहले से लक्ष्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका रोल भी वैसे ही अदा होगा।
अपना श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने यही कहा अर्जुन को, हे अर्जुन तू साक्षी दृष्टा होके देख।
जी।
तो जब ये पक्का हो जाता है, ये स्मृति आ जाती है, शीतली प्राणायाम से या वो भ्रामरी से हमारी याददाश्त तो तेज हो जाती है, लेकिन मेरी ओरिजिनल जो स्मृति है
जी,
कि मैं आत्मा एक शुद्ध हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं आत्मा इस धरा पर एक एक्टर हूँ, पार्ट प्ले करने वाली हूँ, मेरा पार्ट ऐसा होना चाहिए जो सब कहें वंस मोर।
वाह।
तो वंस मोर पार्ट वो है जो सबको सुख देता है।
जैसे कोई अच्छा एक्टर आपको नजर आ जाए, आप बार बार उसे देखना पसंद करते हैं, उस सीन को देखना पसंद करते हैं, तो हमारी स्थिति और हमारी उपस्थिति भी इतनी अच्छी हो कि लोग हमें मिलना, हमसे बात करना, हमें देखना, प्रसन्न चित होकर वो मिले हमसे, तो कितनी अच्छी बात है।
तो इसी को कहते हैं साक्षी दृष्टा का पाठ।
जी जी।
इसका अभ्यास तो चाहिए लंबे समय का, चाहे आप हठ योग करें, एक्सरसाइज करें, उसका भी एक प्रैक्टिस चाहिए।
जी।
अपने मन और बुद्धि को सुधारने के लिए भी एक ज्ञान और योग का लंबा अभ्यास चाहिए। अगर हम साक्षी दृष्टा होकर अपने पार्ट को प्ले करते हैं, चाहे मैं माँ हूँ, बाप हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, ये मेरा रोल है, अच्छी माँ बनूं, अच्छा बाप बनूं, अच्छा भाई बनूं,
मतलब उस सारे वातावरण से थोड़ा सा अपने आप को परे करके थोड़ा विचार कर लें कि मैं इसमें कैसे एक बेहतर अदाकारी कर सकता हूं, या मेरा कैसे बेहतर इसमें रोल हो सकता है, मैं क्या दे सकता हूं, तो आप साक्षी होके करेंगे तो सहज हो जाएगा करना।
तो परिवार भी सुखी, मैं भी सुखी।
वैसे भी कहते हैं ना, थोड़ी ऊंचाई से देखो तो आपको पूरा जो सीन है वो पूरा नजर आता है। तो यदि बीच में हम हैं तो शायद उस स्थिति परिस्थिति को पूरा ना भांप सके, लेकिन जैसे ही साक्षी होंगे तो हम सब चीजों को बेहतर ढंग से समझ जाएंगे और अपने लक्ष्य के मुताबिक अच्छी जो है रोल को अदा कर पाएंगे।
तो इसलिए अपने आप को हम सुखी बनाएं, दूसरों को भी सुख दें।
क्या बात है। तो आइए एक योगी का और अनुभव हम सुनते हैं, एक क्लिप देखते हैं, और कैसे योग हमें मदद करता है, कैसे हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, एक बार फिर से जानते हैं।
योग हमारे भारत का एक प्राचीन संस्कृति को जोड़ने का एक सुंदर तरीका है। मैं तो ये मानती हूँ कि सारे जीवन की उपलब्धियां योग के द्वारा आसान होती है। मैं अगर अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको कहूं, तो मैं तो कहूंगी बाल्य अवस्था से ही मैं योग साधना से जुड़ी। ये राजयोग का अभ्यास मैंने जीवन में किया और उसके द्वारा ही एकाग्रता की शक्ति मेरे अंदर में आई। और बचपन में ही जब मैं योग करती थी, मुझे किसी ने, अपने पिता ने वास्तव में सिखाया कि जब आप पढ़ते हैं तो योग से शुरुआत करो, पहले आप योग साधना करो, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को शुरू करो, तो आपकी एकाग्रता अच्छी होगी। तो मैं मानती हूँ, मैंने जीवन में पढ़ाई शुरू से लेकर अंत तक जब तक मैंने पढ़ाई की, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए और उसका कारण या कहूं उसकी योग को ही मैं उपलब्धि देना चाहूंगी कि योग के द्वारा ही मैंने टॉप भी किया बहुत से, जैसे बीए में मैंने टॉप किया तो उसका आधार योग रहा है। तो योग बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में। महात्मा गांधी की अगर मैं बात कहूं तो महात्मा गांधी हमेशा कहा करते हैं 36 बार चबाकर खाना चाहिए तो तन स्वस्थ बनता है, हमारे अंदर भोजन जो है ठीक से पचता है। वास्तव में इसके पीछे भी जो लॉजिक है वो यही है कि हम प्रभु चिंतन में अगर खाते हैं, शांति से खाते हैं और शुभ चिंतन में रह करके खाते हैं, भोजन करते हैं, तो योग के द्वारा हमारे भोजन पचता भी अच्छा है, जिससे हमारे अंदर स्वास्थ्य, जिसको हम कह सकते हैं तन स्वस्थ रहता है। लोग कहते हैं कि हमारा सलाइवा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो अगर मैं प्राचीन बातों को सामने लाऊं तो पहले कहा जाता था मंत्र को उच्चारण करके, ध्यान करके फिर भोजन करना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है, प्रभु चिंतन में रहकर अगर हम भोजन करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे अंदर शरीर स्वस्थ होता है, पेट की कोई भी बीमारी सब नष्ट हो जाती है। और आजकल यही है, तन रोगी हो गया है, अनेक प्रकार की बीमारियां लग चुकी हैं और मन तो है ही रोगी, तो सोच भी रोगी और शरीर भी रोगी हो गया है। तो अगर हम अपने पुराने ढर्रे पर आए, ढर्रा पुराना हमारा वही है, संस्कृति हमारी वही है कि योग के द्वारा हम अपने जीवन को सुबह से लेकर प्रक्रियाओं को प्रारंभ करें, सवेरे उठें और योग को समय दें और शुभ चिंतन, शुद्ध चिंतन करें, तो हमारी वाणी भी संयमित सुंदर होती है। आजकल देखिए, क्योंकि वाणी संयमित रही नहीं है, लोग आवेश में बोलते हैं, जोश में बोलते हैं, गुस्से में बोलेंगे तो व्यवहार खराब हो जाता है और संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए लोगों ने एक दूसरा नजरिया तरीका अपना लिया है, लोग सारा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, सामने तो बोलना नहीं है, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेजेस पे लगे रहते हैं। लेकिन हमारी वाणी में संयम हो, वाणी में संतुलन हो, सुंदर हो, तो आप पुराने ऋषि मुनियों को देखिए कि उनका ओजस्वी वाणी थी, वरदानी वाणी थी, जो बोलते थे वो हो जाता था, जो सोचते थे वो सिद्ध होता था, उसका आधार ही तप का बल था। आवश्यकता फिर से हमारी जिंदगी में वही है कि हमारे अंदर तप का बल चाहिए और तप के बल से ही सारे कार्य सहज, सरल, पूर्ण होते हैं। अभी हमारी जिंदगी अधूरी सी जिंदगी है, हम चाहते बहुत कुछ अर्जित करना है लेकिन पूरा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और उसका कारण ही ये है कि हमारी व्यवस्थित लाइफ नहीं है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ और है, लेकिन तीनों में सामंजस्य आए उसके लिए योग साधना की ही जरूरत है। तो आइए पुनः हम अपनी जिंदगी में पूर्व संस्कृति की ओर लौटें। सवेरे आप उठें, उठ करके कुछ देर प्रभु चिंतन करें और प्रभु चिंतन में भी विशेष अपने अंदर एक शुरुआत करें, मैं कौन हूँ, स्वयं को जाने, स्वयं का अध्ययन, ये स्वाध्याय बहुत जरूरी है, स्वयं को जाने, मैं एक श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा प्रभु संतान है तो अपने आत्मिक गुण, मौलिक गुण जागृत होंगे। आत्मा के मौलिक गुण है ही शांति, प्रेम, पवित्रता, शुद्धता, ज्ञान, आनंद, शक्ति। क्या इन्हीं चीजों की आवश्यकता नहीं? जब हम अपने मौलिक गुणों को जागृत कर पाएंगे तब हमारी मौलिक शक्तियां जागृत होंगी। आज देखें हमारी शक्तियां जो कि क्षीण हो चुकी हैं, बच्चा भी बोलता है मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों सुनूं? अरे जिंदगी में आए हो तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत से जगह सहन भी करना पड़ता है। तो ये जो हमारी मौलिक शक्तियां हैं, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, आवश्यकता इन्हीं को अपनी जिंदगी में पुनः लाने की है और स्वयं को भी स्वस्थ बनाए, स्वयं को भी अच्छा बनाए, अपने देश को भी इसी चीजों के सहयोग की जरूरत है। तो मैं तो कहूंगी ये बहुत सुंदर प्रयास हुआ है हमारे देश का कि हम योग की तरफ लौट रहे हैं।
तो हमने देखा योग की इस क्लिप को और जाना योग के और महत्व को, उसके रहस्य को। दोस्तों हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो हमें इतने योगियों का सानिध्य मिल रहा है और बेशकीमती जो ज्ञान है वो हमारे को प्राप्त हो रहा है, हम उसे अपनी झोली को भर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा भ्राता अग्निहोत्री जी की ओर कि महेंद्रपाल अग्निहोत्री जी, ये ताप की बात हो रही थी तो कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि बहुत ताप था और उसका कुछ ऐसा अनुभव हुआ और फिर बहुत शीतलता का भी अनुभव हुआ?
जी, पहले बहुत क्रोध आता था, बात पे गुस्सा, जैसे कहते हैं कि नाक पे गुस्सा इसके
जी,
तो हर बात पे घर में भी और ऑफिस में भी बहुत गुस्सा क्रोध बहुत आता था। तो जैसे ही ये ज्ञान मिला, इस ज्ञान से गुस्सा तो एकदम शांत हो गया और गुस्सा ही नहीं आता था, अब शब्द भी निकलते थे दूसरों के लिए जो दूसरों को घायल करते थे। बाद में पता चला, उस समय पता नहीं चलता था, उस समय तो लगता था कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन अब ज्ञान में आने के बाद पता चलता है कि शब्दों के तीर कितने जख्म जबरदस्त बहुत तेज जख्म देते हैं।
बिल्कुल जी, कहते हैं शब्दों के घाव नहीं भरते,
हाँ,
और किसी चीज का घाव भर जाता है,
सब घाव भर जाते हैं
जी।
तो इस ज्ञान में आने के बाद, उसके बाद तो अब क्रोध तो बिल्कुल शांत हो गया, पता चल गया कि प्रसन्नता और शांति इनका वैल्यू क्या है। हम हर काम पहले खुशी के लिए भागते थे करते थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद पता चला हर काम को खुशी खुशी से करना चाहिए,
बिल्कुल
खुशी के लिए नहीं, तो उसके बाद शांति के लिए नहीं, शांति से,
मतलब आप खुशी का स्वयं स्वरूप हो जाते हैं, शांति का स्वयं स्वरूप हो जाते हैं, आपसे वो सता स्वतः ही प्रवाहित होती है। दीदी आप बताएं इस बारे में हमें कुछ कि कैसे हमारे से खुशी और शांति सदा प्रवाहित होती रहे।
मैं आपको इसमें एक छोटी सी टिप दे देती हूँ
जी।
पहली बात, मुझे अपना लक्ष्य पक्का रखना है, क्या भी स्थिति हो जाए मुझे प्रसन्न रहना है बस। दूसरी बात, मैं हूं ही शांति का अवतार, शांति का देवता हूं, तो जैसे देवी देवताओं के आगे चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति कैसा भी भक्त जाता है वो अपनी स्थिति में स्थिर रहते हैं।
मतलब आज किसी की कोई भी अवस्था हो, कितना भी गुस्सा कर रहा हो, यदि वो अपने आप को इस तरह से कहना शुरू कर दे कि मैं शांति का देवता हूं या शांति का अवतार हूं या शांति की देवी हूं, तो ऐसा सिर्फ महसूस करने से सोचने से उसके व्यवहार में फर्क आ जाएगा,
बहुत बहुत फर्क
जी, क्योंकि जहां व्यक्ति मैं कह देता है तो वो फिर स्वरूप बनना शुरू हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज इतने बेहतरीन ज्ञान से आपने हमें सजाया है। आदरणीय दीदी सुषमा जी, भ्राता महेंद्र पाल जी, बॉबी भाई जी, आप सबके सहयोग के लिए ताकि हमारे दर्शकों तक जीवन का बेहतरीन ज्ञान पहुंच सके, उनका जीवन और सजे, उनका जीवन और निखरे, इसी लक्ष्य को हम लेकर योग रहस्य में आते हैं। दोस्तों आप अपने विचार अच्छी तरह चुनकर अपना जीवन जितना चाहे सजा सकते हैं, इसको जैसा चाहे बना सकते हैं। आप कभी मत सोचिए कि आज आप किस स्थिति में है, लेकिन अपना वो रूप देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, और आपके अंदर की ये एक शक्ति, आपके अंदर का सच्चे दिल का लक्ष्य आपको बड़ी ऊंची मंजिलों का जो है रास्ता तय करा देगा। और ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जीवन में बढ़ते रहें, चढ़ते रहें, निखरते रहें, संवरते रहें और हमसे मिलते रहें योग रहस्य में। ओम शांति, नमस्कार।